ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवद्योत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकीम्। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनाभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं सहगजातान् सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सागदूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमाम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारने निर्विशेषा शून्यवादे पाश्चाद्देशतारने। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्या नामने गौरत्स्वे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तत्वकांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुवश्च कृपासिन्धुवैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुगम करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपाहं वंदे श्रीगुरुदीन तारणं परमानंदमाधवम्। पादो यदीयो प्रथमो द्वितीयो तृतीयै तुरीयो कथितो यदौरु नाभिस्तथा पञ्चमैव षष्ठो भुजान्तरं दोर्युगलं तथान्यो कंथस्तु राजन् नवमो यदीयो मुखारविन्दं दशमं प्रफुल्लं एकादशे यस्य ललाटपट्टं शिरोपितु द्वादशैव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवता स्वरूपम् भजामहे भागवता स्वरूपम्।
हरे कृष्णा। आज हम श्रीमद् भागवतम के सप्तम स्कंद में तृतीय अध्याय तदनंतर पंद्रवा एवं सोलहवा श्लोक देखेंगे।
नाददर्श प्रतिच्छन्नम् बल्मीकृतत् बल्मीकतृणकीचकैः पिप्पलिकाभिराचीर्णम् मेदस्त्वंगमाशोणितम्।
शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा। ना नहीं ददर्श देखा प्रतिच्छन्नम आवृत ढका हुआ बल्मीक बाबी तृण घास कीचकई तथा बांस के डंडे से पिपलिका भी चीटियों द्वारा आचीर्णम चारों ओर से खाया हुआ मेदह जिसकी चर्बी त्वक चमड़ी मांस मांस शोड़ित तथा रक्त तपंतम तपाता हुआ तपसा कठिन तपस्या से लोकान तीनों लोकों को यथा जिस तरह अभ्र बादलों से अपिहितम आच्छादित रविम सूर्य को विलक्ष्य देखकर विस्मितः आश्चर्यचकित प्राह कहा हसन हंसते हुए तम उसको हंसवाहनः हंसयान पर आसीन ब्रह्मा ने ब्रह्मा जी ने। साथ में ही दोहराते जाइए। हंसयान पर चलने वाले ब्रह्मा जी पहले तो यह नहीं देख पाए कि हिरण्यकश्यपु है कहाँ, क्योंकि उसका शरीर बांबी घास तथा बांस के डंडों से ढक गया था। चूंकि हिरण्यकश्यपु दीर्घ काल से वहां था, अतएव चीटियां उसकी खाल चर्बी मांस तथा रक्त चट कर चुकी थीं। तब ब्रह्मा जी आदि देवताओं ने ब्रह्मा जी तथा देवताओं ने उसे खोज निकाला। वह बादलों से आच्छादित सूर्य की भांति सारे संसार को अपनी तपस्या से तपा रहा था। आश्चर्यचकित होकर ब्रह्मा जी हंस पड़े और उसे इस प्रकार संबोधित करने लगे। तात्पर्य, जीवात्मा अपनी त्वचा मज्जा अस्थि रक्त इत्यादि के बिना केवल निजी शक्ति से जीवित रह सकता है, क्योंकि यह कहा गया है असंगोयम पुरुषः। जीव को भौतिक आवरण से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। हिरण्यकश्यपु ने अनेक वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। दरअसल कहा जाता है कि उसने 100 दैवी वर्षों तक तपस्या की। चूंकि देवताओं का एक दिन हमारे 6 माह के बराबर होता है, अतएव यह अत्यंत दीर्घ समय था। प्रकृति ने अपने ही नियमों से उसके शरीर को केंचुओं, चींटियों तथा परजीवियों ने लगभग खा लिया था, और इसलिए ब्रह्मा भी पहले उसे नहीं देख पाए, किंतु बाद में ब्रह्मा जान गए कि हिरण्यकशिपु कहां पर था, और वे उसकी तपस्या की अद्भुत शक्ति को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उस समय कोई भी यह निष्कर्ष निकालता कि हिरण्यकशिपु मृत हो चुका था, क्योंकि उसका शरीर कई तरह से आच्छादित हो चुका था, लेकिन इस ब्रह्मांड के प्रधान जीव ब्रह्मा समझ गए कि हिरण्यकशिपु जीवित है, क्योंकि भौतिक तत्व द्वारा आच्छादित हो गया है। यहां इस ओर भी ध्यान देना होगा कि यद्यपि हिरण्यकशिपु ने वर्षों तक लगातार यह तपस्या की थी, फिर भी वह दैत्य तथा राक्षस के रूप में ही विख्यात था। अगले श्लोक से पता चल जाएगा कि इस प्रकार की कठिन तपस्या बड़े से बड़े साधु पुरुष भी नहीं कर सकते, तो फिर वह राक्षस तथा दैत्य क्यों कहलाता था? इसका कारण यह था कि उसने जो भी किया वह सब अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए किया था। उसका पुत्र प्रहलाद अभी केवल 5 वर्ष का था, अतएव वह कर ही क्या सकता था। फिर भी नारद मुनि के उपदेशों के अनुसार केवल थोड़ी सी भक्ति करके प्रहलाद भगवान का इतना प्रिय बन गया कि वे उसे बचाने के लिए आए, जबकि हिरण्यकशिपु अपनी सारी तपस्या के बावजूद मारा गया। भक्ति तथा सिद्धि की अनेक विधियों में यह अंतर है। जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कठिन तपस्या करता है वह समग्र संसार को डराता है, जबकि थोड़ी सी भक्ति करने वाला भक्त हर एक का प्रिय होता है। सुहृदम सर्वभूतानां। चूंकि भगवान प्रत्येक जीव के शुभ चिंतक हैं, और चूंकि भक्त भगवान के गुण प्राप्त कर लेते हैं, अतएव भक्त भी भक्तिमय सेवा के द्वारा हर एक के कल्याण के लिए कर्म करता है। इस प्रकार यद्यपि हिरण्यकशिपु ने ऐसी कठिन तपस्या की थी, किंतु वह दैत्य तथा राक्षस ही बना रहा, जबकि उसी दैत्य पिता से उत्पन्न प्रहलाद महाराज अत्यंत सम्मानित भक्त बन गए, जिससे स्वयं परमेश्वर ने उनकी रक्षा की। इसलिए भक्ति सर्वोपराधि विनिर्मुक्तम कहलाती है, जिससे सूचित होता है कि भक्त समस्त भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाता है, और वह अन्याभिलाषिता शून्यम अर्थात समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त होकर दिव्य पद पर स्थित होता है। बड़ा सुंदर विवेचन है। सर्वप्रथम यहां पर उपस्थित सभी वैष्णव एवं वैष्णवियों के चरणारविंद में दास नमन करता है, आप मुझे कृपा एवं शक्ति प्रदान करें जिससे भागवतम का सही मर्म और तात्पर्य उपस्थित हो सके, कि वैष्णव कृपा ले से ही जीव का उद्धार हो सकता है। यहां पर विगत कई दिनों से हम हिरण्यकशिपु का प्रसंग देखते आए हैं, और इस अध्याय में अभी 4-5 श्लोकों में किस प्रकार से बड़ी विकट और उद्भट तपस्या की गई हिरण्यकशिपु के द्वारा वो हमने देखा है। इस श्लोक में श्रील प्रभुपाद ने बड़े अच्छे कुछ मर्म प्रस्तुत किए हैं, उनको हम देखेंगे। सबसे पहले प्रभुपाद कह रहे हैं कि हिरण्यकशिपु यद्यपि मृत प्राय दिख रहा था, उसमें ना तो अस्थि ही थी केवल, ना तो त्वचा, मज्जा, अस्थि, रक्त, बाकी जितनी 6 चीजें होनी चाहिए सप्त धातुओं में, वो सब उसका नाश हो गया था, केवल एक अस्थि बच गई थी, और उसके प्राण थे वो अस्थिगत थे। यद्यपि जैसे कलयुग में बोला गया है, कलयुग में प्राण अन्नगत हैं, अगर कोई केवल फलहार करे या फिर तरल पदार्थ का ही सेवन करे तो उसको कुछ दिन बाद शरीर में इतनी शक्ति नहीं रहेगी, और वो दिन प्रतिदिन शक्ति का ह्रास अनुभव करेगा क्योंकि अन्नगत प्राण है। लेकिन पूर्व पूर्व युगों में ऐसा नहीं था। सतयुग में समाधि एवं तपस्या के द्वारा लोग इतनी उनमें सिद्धि आ जाती थी कि उनके प्राण अस्थिगत हो जाते थे कि केवल अस्थि है, मज्जा भी नहीं है, रक्त भी नहीं है, त्वचा भी नहीं है, तो भी उनमें प्राण विराजमान रहता था। यह सामर्थ्य कलयुग में नहीं है, कलयुग के जीवों में कदाचित ऐसा नहीं देखा जा सकता। तो क्योंकि वो सतयुगी जीव है तो इसलिए उसमें ऐसी घोर और उद्भट तपस्या देखने को मिलती है कि केवल और हर कोई भी नहीं कर सकता ऐसे, जिसमें एक विशेष दृढ़ता है वही इस प्रकार की तपस्या कर सकता है। यद्यपि अगर इनका मूल रूप देखा जाए तो वो तो स्वयं भगवत पार्षद हैं, जय विजय के रूप से विख्यात थे, वो एक अलग प्रसंग है। तो यहां पर हिरण्यकश्यपु ने इतनी भयंकर तपस्या की लेकिन फिर भी उसको असुर श्रेष्ठ ही कहा गया। तपस्या का काल भी यहां पर निर्धारित किया गया है, कितने समय तक उन्होंने तपस्या की, 100 वर्षों दिव्य, 100 वर्ष दिव्य अर्थात देवताओं के। हमारा जब 6 महीने बीतता है तब देवताओं का एक दिन होता है और जब हमारे आगामी 6 महीने बीतते हैं तब उनकी एक रात होती है, मतलब हमारा एक वर्ष उनका एक दिन रात, देवताओं के हिसाब से उनके 24 घंटे हुए। और इस प्रकार से जब गणना की जाएगी तो हमसे वो कितने गुना अधिक जीते हम अनुभव कर सकते हैं। तो कम से कम मतलब 360 गुना अधिक वो हमसे जीते हैं, ये तो हम अनुभव कर ही सकते हैं। तो फिर इस प्रकार की जो घोर तपस्या करने के बावजूद भी ये जो हिरण्यकश्यपु है इसके चित्त में परिवर्तन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि वो भी घोर तपस्या कर रहा है, इतनी तपस्या तो हम भी नहीं कर सकते, कोई भी नहीं कर सकता साधारण जीव, तो उसके चित्त में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है ना, कोई तपस्या तो कम नहीं की। तो उसी को प्रभुपाद जी यहां पे बड़े अच्छे से कहे हैं कि उसने जो कुछ भी किया वो किस लिए किया, आत्म इंद्रिय तृप्ति के लिए। अगर कोई व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी करे उसको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। हाँ, भक्ति में ऐसा नहीं होता है, अगर वो व्यक्ति जैसे हरिनाम जप कर रहा है भले अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कर रहा है, बाद में वो शुद्ध हो जाएगा। भक्ति रसामृत सिंधु में ऐसी कई विवेचनाएं आया ही हैं और भगवद्गीता भी बोलती ही है कि आर्त अर्थार्थ जिज्ञासु भरतर सभा, ये 4 प्रकार के लोग हैं, ये उत्तमा भक्ति के लक्षण में तो नहीं आते लेकिन एक शुरू के साधकतम स्तर पर जरूर आते हैं। तो इनकी भी एक स्थिति है कि व्यक्ति अगर अर्थार्थी है, जिज्ञासु है, ज्ञानी है, कोई भी हो या आर्त है, अगर वो भक्ति में आता है तो शुद्ध हो जाता है। लेकिन इसने भक्ति नहीं की, तपस्या भक्ति में नहीं आती है। भक्ति का एक अनुसंगिक अंग हो सकती है कि कभी कभी सहायक हो जाए, जैसे एकादशी आई और किसी भक्त ने निर्धारण किया कि आज मैं इतनी माला जप करूंगा, 64 करूंगा, 128 करूंगा, 192 करूंगा, 300,000 नाम जप करूंगा, जितना भी संख्या कर सके वो उतना करूंगा, उसके बाद ही अन्न जल ग्रहण करूंगा, अन्न तो करेगा नहीं, जो भी जल है उसको ग्रहण करूंगा। तो उस समय जो व्यक्ति जो साधना कर रहा है, यद्यपि वो एक प्रकार से तप ही कर रहा है, लेकिन तप का उद्देश्य क्या है कि ज्यादा ज्यादा भगवान का स्मरण हो, अधिकतम मात्रा में भगवान का नाम जप हम लिख कर सकें। क्योंकि कलयुग में हो ऐसा नहीं हो सकता कि हमेशा ही भावना बनी रहे कि हमेशा जब हम कृष्ण बोल रहे हैं तो कृष्ण स्मरण आ रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी शास्त्र को स्मरण रखते हुए कि अभिन्न नाम नामित्वम है ना, कि नाम और नामी में अभेद है, शास्त्र के इन वाक्यों को स्मरण करके अगर कोई व्यक्ति निरंतर भगवान का नाम जाप करता है तो उसको वही सिद्धि प्राप्त होती है जो एक ऐसा जो व्यक्ति नाम लेते समय कृष्ण बोला और कृष्ण साक्षात दिख रहे हैं उसको, हरे कृष्णा बोला तो साक्षात राधा रानी कृष्ण उसको दिख रहे हैं, ऐसे अनुभूत जो व्यक्ति हैं उनको भी जो उपलब्धि होती है वही उपलब्धि उस जीव को हो जाएगी। ऐसा हमने एक बार देखा था, ऐसा दशम स्कंद के 87वें अध्याय में वेद स्तुति में श्री जीव गोस्वामी पाद द्वितीय श्लोक की टीका में लिखते हैं स्पष्ट रूप से, कि अगर कोई व्यक्ति भक्ति के जो नियम है विधि विधान उनको केवल कर रहा है, भले उसकी भावना नहीं है, या फिर कोई व्यक्ति कर्मकांड कर रहा है, कर्मकांड में जैसे आचमन किया हम तीन बार करते हैं, ये कर्मकांड की विधि है कि ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, नारायण नमः, तो ये भले उसकी भावना ऐसी हो रही है कि नहीं हो रही कि मैं शुद्ध हो रहा हूं या नहीं, लेकिन उसने वो नियम पूरा किया तो वो शुद्ध हो गया है, ऐसा नियम है। इसी प्रकार से अगर कोई जीव भले उसकी कितनी भावना, जैसे कई बच्चे होते हैं छोटे बच्चे, अब उनका तो ज्यादातर मन है वो क्रीड़ों में ही रहता है, खेलकूद में ही रहता है, लेकिन फिर भी उस जीव की भी शुद्धि होती है, और वो भी अगर गुरुपाद आश्रय से नियमित संख्या को अगर जपता है, क्योंकि कई बार हम जो चीज करते हैं, जो साधन करते हैं, उसमें महत्व बुद्धि की न्यूनता हो जाती है ना, क्योंकि हम उसमें इतने रसपद जाते हैं तो हमें लगता है कि ये तो सामान्य वस्तु है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर हम भक्ति रसामृत सिंधु और उज्ज्वल नीलमणि जैसे ग्रंथों को टटोलें जो रुचिरलील रूप गोस्वामी पाद के द्वारा रचित हैं, तो उसमें स्पष्ट रूप से लिखा है, श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट रूप से लिखा कि एक नाम लेने वाले का भी बहुत अधिक उद्धार हो जाता है। मतलब उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते कि जब तप होम इत्यादि कोई व्यक्ति कर रहा है और एक व्यक्ति केवल हरिनाम कर रहा है तो उसमें कितना अंतर है, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। लेकिन भक्तों के जीवन में जो कुछ भी भक्ति का अनुभव नहीं होता है उसका केवल एक मूल कारण होता है, वह होता है अपराध। अपराध से बस थोड़ा कोई अगर बच के भक्ति का अनुशीलन करे तो बहुत थोड़े समय में ही उसको शुद्ध भक्ति का अनुभव होने लगता है और भक्ति में एक विशेष रुचि का और विशेष उन्माद की प्राप्ति हो जाती है, ऐसा कई भक्तों में देखने को मिलता है। तो यहां पर श्रील रूप प्रभुपाद ने बड़ा अच्छा तात्पर्य में लिखा कि क्योंकि वह उसकी भावना क्या थी, इंद्रिय तृप्ति की थी, तो इतनी तपस्या के बावजूद भी उसको कुछ भी भगवत अनुभूति नहीं हुई। यद्यपि ये भगवत परिकर है लेकिन अभी यहां पे जो अनुकरण कर रहे हैं वो एक द्वेषी पात्र के रूप में कर रहे हैं, भगवान से उनका द्वेष है, तो भगवान को भगवान के विरोधी होने के कारण भगवान के लिए कुछ इस प्रकार से नियोजन कर रहे हैं। तो इस प्रकार से यहां पे बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि भक्ति किस लिए करना है, कृष्ण प्रीतियार्थम, है ना, कि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए भक्ति करना है। जैसे कि इस श्लोक के आखिरी में बड़े अच्छी बात कही, अन्याविलासिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम अनुकूलना कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। ये जो श्लोक है भक्ति रसामृत का एक 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 ग्यारह है, मतलब तत्वतः इससे पहले जो भी श्लोक कहे गए हैं वो मंगलाचरण और स्तुति में कहे गए हैं, लेकिन ये जो श्लोक है अन्याविलासिता शून्यम ज्ञान कर्मावृतम अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा, ये अति अति महत्वपूर्ण श्लोक है और ये गौड़ी वैष्णव सिद्धांत को बड़े अच्छे से निरूपित करता है। इसकी क्या महत्वता है आज हम देखते हैं श्रील चक्रवर्ती पाद की टीका के माध्यम से इस श्लोक का विवेचन करेंगे, क्योंकि यह जो श्लोक है यह हर एक साधक को समझना अति आवश्यक है, क्योंकि इस श्लोक में भक्ति की जो गहनतम अवस्था है उसको निर्धारित किया है और साथ में जो विशिष्ट प्रयोजनीय वस्तु है क्या है, उत्तमा भक्ति। एक तो नीचे की भक्ति भी होती है कि आर्त अर्थार्थी जिज्ञासु भरत अर्थवाह, ये जो है ज्ञानी, ये चार लोग हैं, आर्त अर्थार्थी, आर्त यानी जैसे गजेंद्र, गजेंद्र ने किस प्रकार से भक्ति की थी, आर्त होके कि प्राण निकलने वाले हैं, पूर्व जन्म का अभ्यास था भक्ति करने का, क्योंकि ऐसे तो प्राण निकलते समय किसी को भगवत स्मरण तो होता नहीं हर किसी को, वो तो पूर्व जन्म का अभ्यास था, इतना अधिक उन्होंने हरिनाम किया था, इतना अधिक साधना की थी कि मरण समय भगवान का स्मरण हुआ और उन्होंने एक कमल तोड़कर भगवान को अर्पित किया गोविंद को, तो ये आर्त भक्त हैं। यद्यपि निष्काम है, पहले आर्त भाव से किया फिर अंत में निष्काम हो गए, जैसे कि अष्टम स्कंद में अगर हम देखें तो बोलते हैं कि ना जीवी साहम इच्छा हम, कि मैं जीने की इच्छा नहीं करता हूं, मेरी कोई भी इच्छा नहीं है, मैं तो केवल आपको निष्काम भाव से। यद्यपि यह भक्ति का अनुसंगिक मतलब विशेष फल है कि व्यक्ति किसी भी भावना से आए, अंत में उसको शुद्ध होना ही है। इसलिए भक्ति में, भक्ति मार्ग में हर एक की यहां पे प्रशस्ति है कि हर कोई आए, कोई किसी भी भावना से आए, कैसे भी आए, उसको परम फल तो मिल ही जाएगा। इसलिए भक्ति मार्ग में हर एक को प्रोत्साहन दिया गया। ज्ञान मार्ग में ऐसा नहीं होता, ज्ञान मार्ग में तपस्या प्रधान रहती है। अगर कोई व्यक्ति तपस्या नहीं करेगा तो ज्ञान टिकेगा ही नहीं, क्योंकि ज्ञान को एक तरल पदार्थ की तरह कहा गया है। वो तब टिकेगा जब उसमें एक पात्रता होगी, लेकिन भक्ति में ऐसा नहीं है। तो यहां पे अर्थ हो गए, अर्थार्थी ध्रुव महाराज का उदाहरण आता है कि ब्रह्मा जी से भी बड़ा परम पद प्राप्त करना चाहते थे। ब्रह्मा जी की जो स्थिति है उससे भी ऊंची स्थिति प्राप्त करना, लेकिन उनको भी शुद्धा भक्ति अंत में प्राप्त हुई। और उनकी जो विशेष 12 श्लोकों में जो स्तुति हुई है चतुर्थ स्कंद में, वो बड़ी ही दृष्टव्य है। और भक्तों के लिए उन्होंने विशेष रूप से कहा कि मुझे भक्तों का संग प्रार्थना है, कि भक्तों का संग मुझे चाहिए, यानी शुद्धा भक्ति की प्रार्थना कर रहे हैं। क्योंकि शुद्धा भक्ति जो है वो भक्तों के संग में ही हो सकती है, भक्तों के संग के बाहर नहीं हो सकती। फिर ज्ञानी या जिज्ञासु, सौनक आदि ऋषि, सौनक आदि ऋषि जो पहले उपनिषदों को पढ़ रहे थे, यज्ञों को कर रहे थे, उनका मूल प्रयोजन था जिज्ञासु थे, देखना चाहते थे कि सृष्टि क्या है, प्रकृति पुरुष विवेक देखना चाहते थे कि प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है, भगवान क्या है, मैं क्या हूं, इस प्रकार से आत्मज्ञान का अनुशीलन करना चाहते थे। लेकिन सूद गोस्वामी ने उनको कथा सुनाई भागवतम, तब उनका उद्धार हुआ और उनको शुद्धा भक्ति प्राप्त हुई। तो मतलब व्यक्ति किसी से भी भावना से आ रहा है, अंतोगत्ता वो शुद्ध भक्ति के स्तर पर आ रहा है, उत्तमा भक्ति पर। और सनकादि को ज्ञानी की स्थिति में कहा जाता है कि वो आत्मस्थित थे। आत्मस्थित मतलब कि आत्मा का अनुभव कर रहे थे। उनके लिए तत्त्वमसि सोहम, इस प्रकार की जो बात है कि जो वो है वही मैं हूं, सो अहम वही मैं हूं, इस प्रकार का अनुभव वाक्य हैं जो, या फिर ये, क्योंकि ये सामान्य वाक्य नहीं है, क्योंकि ये बोलना और अनुभव करना एक दो विभिन्न वस्तुएं हैं। क्योंकि अनुभव करने में व्यक्ति को जन्मों लग जाते हैं इस चीज को। और जैसे कि सुखदेव गोस्वामी इत्यादि भी जो हुए हैं वो पहले इसी अवस्था में थे। जैसे कि श्लोक में आता है कि आत्मा रामस्य मुनयो निर्ग्रंथेऽपि अनुक्रमे, कि आत्मा राम थे वो पहले, है ना। फिर कुर्वन्ति इत्थम भूत गुणो हरे, कि भक्ति के ये गुण होते हैं, कि अहेतु की भक्ति के ये गुण होते हैं। तो इस प्रकार से पहले व्यक्ति किसी भी अवस्था में हो अगर भक्ति कर रहा है तो निश्चित वो उत्तमा भक्ति के स्तर पे आ जाएगा, भले उसको एक जन्म लगे या कई जन्म लगे ये अलग बात है, लेकिन आएगा निश्चित ही। अब उत्तमा भक्ति है क्या, उसको हम थोड़ा सा देखते हैं। तो यहां पे बोला है अन्य अभिलाषिता शून्यम। पहले थोड़ा शब्दार्थ पे विवेचन करते हैं, फिर टीका को देखेंगे कि अन्य अभिलाषाएं छोड़ देना चाहिए। अन्य अभिलाषाएं क्या क्या होती हैं, कि भक्ति की जो अभिलाषा, भक्ति में भी अभिलाषाएं होती हैं कि मैं भगवान की ज्यादा सेवा करूं, ये भी अभिलाषाएं होती हैं, है ना। जैसे एक बार दृष्टांत आता है रामायण में कि एक बार, क्योंकि जितनी भी सेवाएं होती थी लंका में या फिर भगवान के यहां पर, तो श्री हनुमान जी उसको पूरा पूरा कर देते थे, बाकी सब भक्तों को कोई सेवा का अवसर ही नहीं मिलता था। तो सभी ने एक बार इष्टगोष्ठी की कि भाई चलो इस बार अपन सारी सेवाएं बांट लेंगे और हनुमंत को कोई भी सेवा नहीं दी जाएगी। उन्होंने एक सूची बनाई और सबने अपने अपनी सेवाओं को बांट लिया। सूची भगवान श्री राम के सामने प्रस्तुत की गई। राम, श्री राम उनको देखते हैं तो बोले हाँ बहुत अच्छी बात है, बोले इसमें हनुमान का तो नाम ही नहीं है। तो हनुमान जी बोलते हैं कि प्रभु थोड़ा मुझे भी दिखाइए, मैं भी देखना चाहता हूँ कि मेरे लिए कुछ सेवा है क्या इसमें। तो उन्होंने सारी सेवाओं को गिना दिया गया, पर उसमें एक सेवा फिर भी छूट गई कि अगर भगवान को अगर जमाई आएगी तो चुटकी कौन बजाएगा। तो देखिए, अगर सेवा करने का उत्साह है तो व्यक्ति किसी भी अवस्था में सेवा ढूंढ लेगा, है ना, सेवोन्मुख हो गए। तो ये सेवा की भावना है। लेकिन अन्य अभिलाषा मतलब भुक्ति मुक्ति, ये अन्य अभिलाषाओं में आती है कि भोग सामग्री की अभिलाषा, कि इस भौतिक देह से हम भोग करें या फिर भौतिक देह त्याग कर हम स्वर्गीय देह को प्राप्त करके भोग करें या फिर मोक्ष पद को प्राप्त करें, इसकी अभिलाषा, इन सब को नहीं करना है। ये भक्ति में बहुत बड़ी बाधक होती है। अगर किसी की बार बार स्पृहा हो भी रही है तो भी उसको शास्त्र ज्ञान से उसको छिन्न कर देना चाहिए, छिन्न भिन्न कर देना चाहिए। इसलिए शास्त्र यहां पे है, शास्त्रों की यही प्रासंगिकता है कि अगर कभी भक्ति प्रतिकूल या भक्ति के जो विरुद्ध वस्तु है अगर उसकी हमें बार बार कामना हो रही है तो शास्त्र एवं गुरु के निर्देशन से व्यक्ति उसको तुरंत उसको छिन्न भिन्न कर देना चाहिए वैष्णव का संग करके, क्योंकि अगर व्यक्ति उनको बढ़ने देगा तो फिर उसमें बहुत ज्यादा समय लग जाएगा। जैसे कि उदाहरण आता है कि अगर एक बार रोग बढ़ गया तो उसकी दोगुना चौगुना और कई गुना औषधि सेवन करना पड़ता है उसके निवारण के लिए। इसी प्रकार से अगर विषय के रोग बढ़ जाते हैं और शुरू में ही उनका निवारण नहीं किया गया तो हमें उसकी कई गुना औषधि का सेवन करना होता है। तो अन्य अभिलाषिता शून्यम, ज्ञान कर्म अनावृतम। अब ज्ञान और कर्म अनावृत, ज्ञान क्या है? टीकाकार कह रहे हैं कि ज्ञान कर्म मतलब निर्वेद ब्रह्म अनुसंधानम, भेद कि जीव अलग है और ब्रह्म अलग है, भगवान अलग है, ये तो हो गया भेद। निर्वेद ब्रह्म ज्ञानम मतलब कि मैं और भगवान एक ही है, इस प्रकार का जो सोचते हैं अद्वैतवादी विशेष रूप से, तो इस प्रकार का जो ज्ञान अनुशीलन है इसका क्या करना है? नहीं करना है, है ना। तो इसके लिए त्याग करने के लिए क्या है कि निर्वेद ब्रह्म ज्ञानम अनुशूलनम त्याग पूर्वकम, कि इस प्रकार का ज्ञान नहीं करना है। और कर्म मतलब, कर्म के लिए इन्होंने कहा है कि स्मार्त नित्य नैमित्तिक आदि कर्म, कि स्मार्त विधि में कि भाई अब गणेश जी की तिथि आ रही है तो गणेश जी की स्थापना कर लिया, अब नव दुर्गा आ रहे हैं तो नव दुर्गा की स्थापना कर ली, और भी तो ये स्मार्त विधि के, इसमें कोई बुराई नहीं है, ये भी वैदिक है। लेकिन जो भक्ति मार्ग के अनुशूलन है उस विशेष रूप से जो उत्तमा भक्ति को प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए ये अनिवार्य नहीं है, उनके लिए बिल्कुल भी स्प्रेह नहीं है। इसलिए बोला है स्मार्त नित्य नैमित्तिक आदि, लेकिन उन्होंने बता दिया ना तो भजनीय परिचर्य। आप कोई बोले कि ये भी तो कर्म है कि भाई भगवान की आरती की जा रही है, परिचर्या कर, भगवान का अभिषेक किया जा रहा है, भगवान के मंदिर में सोहनी सेवा दी जा रही है, तो ये भी तो परिचर्या है, ये भी तो कर्म है, अब क्या इसको भी हटा दें क्या? तो बोले नहीं, ये हटाने वाली वस्तु नहीं है। हटाने वाली वस्तु क्या है? जो स्मार्त नित्य नैमित्तिक विधि है इनको हटाना है, ना कि भजनीय परिचर्या को, जो भजनीय परिचर्या उनको नहीं। इसी प्रकार से ज्ञानियों में भी ज्ञान, ज्ञान इस प्रकार का जो ज्ञान है कि निर्वेद ब्रह्म अनुसंधान जो ज्ञान है उसको हटाना है कि भाई तत्वमसि सोहम प्रज्ञानम ब्रह्म, इस प्रकार का चिंतन नहीं करना है भक्तों को, शुद्ध भक्तों को जिनको उत्तम भक्ति प्राप्त करनी है उनको क्या चिंतन करना है कि जो भजनीय तत्व अनुसंधानम, भजनीय तत्व अनुसंधानम कि भजन में जो तत्व जरूरी है आवश्यक है उनका हमें अनुसंधान करना है कि हाय कि इतने दिन हो गए मुझे, 10 साल से मैं जप कर रहा हूं, अभी तक मुझे इस प्रकार की वृत्ति प्राप्त नहीं हुई कि चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं कि नयनम गलत अश्रु धारे, कि भाई एक बार एक अश्रु तो गिरे कम से कम, धारा भली ना गिरे तो कम से कम 2-4 ही गिर जाए, तो ऐसी स्थिति क्यों नहीं आ रही। तो इस प्रकार का जो भक्ति का भजनीय तत्व अनुसंधान है वो व्यक्ति को विशेष रूप से करना है। नहीं समझ में आ रहा है गुरुवर्ग से पूछना है, आचार्यों का अनुसरण करना है, पुस्तकों को देखना है, तो इससे इस प्रकार का जो अनुसंधान है वो निश्चित ही द्रष्टव्य है और निश्चित ही करणीय है, करना भी है। इसलिए यहां पे बोला है क्योंकि इस श्लोक का कई बार लोग अनर्थ भी कर देते हैं ज्ञान और कर्म से। वो ज्ञान मतलब वो समझते भगवत गीता भागवतम चैतन्य चरितामृत भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना भी ज्ञान की दृष्टि में आता है, बिल्कुल नहीं, ये ज्ञान नहीं है। क्योंकि ये जो पुस्तक पढ़ने से व्यक्ति को जीवर स्वरूप हुए कृष्ण नित्य दास का अनुभव होता है, ना कि वो निर्वेद ब्रह्म ज्ञान का अनुभव करता है। तो इसलिए ये जो ज्ञान का अनुशीलन है ये किस लिए है? भक्ति उत्तम भक्ति को प्राप्त करने के लिए, तो ये करणीय वस्तु है। इसी प्रकार से ज्ञान वस्तु के लिए कहा गया, इसी प्रकार से कर्म के लिए, और आदि शब्द से भी टीकाकार ने कहा है, आदि शब्द से मतलब है ना। तो यहां पर लेकर एक वस्तु ध्यान रखने के योग है, इसमें क्या कहा है कि ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, निषेध नहीं बोला कि ना कर्तव्यम, इससे आवृत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति ये ज्ञान रखता है अद्वैतवाद वाला भी साथ में भजन कर, क्योंकि जैसे कि श्रील चक्रवर्ती पाद के जीवन में और उनके जो विशिष्ट शिष्य हुए परम रसिक चूड़ामणि बलदेव विद्याभूषण पाद, तो वो तो वेदांताचार्य हैं। अब कोई व्यक्ति वेदांत के ऊपर अगर भाष्य लिखेगा तो उसको निश्चित ही शंकर भाष्य पढ़ना होगा, श्रीपाद जीव गोस्वामी पाद वृंदावन आने से पूर्व 4-5 वर्ष वाराणसी में भी रहे हैं और वहां पे उन्होंने रह के षट दर्शन का बड़ा विशिष्ट अध्ययन किया। तो ऐसा नहीं है कि जो वैष्णव है उसको वो सिद्धांत मालूम नहीं होते, वो भी एक सिद्धांत है, उनको वो मालूम रखता है, लेकिन अपने जीवन में जो अनुशीलन करता है वो उत्तम भक्ति का ही करता है। तो कितना करना है कि इन ज्ञान का और कर्म का इतना मिश्रण होना चाहिए, इतना अनुभव होना चाहिए भक्ति में कि वो आवृत ना कर दे भक्ति को, है ना, कि भक्ति आवृत नहीं होनी चाहिए। मतलब मूल रूप से भक्ति होनी चाहिए, लेकिन कभी ज्ञान का भी अगर आवश्यकता हो कि कभी निर्वेद ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, जैसे तृतीय स्कंद आप पढ़ें या द्वितीय स्कंद पढ़ें, तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं कि जिसमें केवल निर्वेद ब्रह्म ज्ञान की ही चर्चा हुई है, केवल उसकी ही चर्चा है। तो वहां पे आपको वो तत्व समझने के लिए उसका अनुसरण करना ही पड़ेगा, लेकिन भले ही वो भक्तियों के लिए ग्राह नहीं है, ग्राह नहीं है वस्तु, लेकिन फिर भी व्यक्ति उसका अनुशीलन करता है। तो यहां पे फिर आदि शब्द से उन्होंने क्या कहा कि यज्ञ वैराग्य योग सांख्य अभ्यास आदय तय अनावृतम, कि इन वस्तुओं से अनावृत रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि इनका विसर्जन कर देना चाहिए, इसका उत्सर्जन कर देना चाहिए या इनको एकदम ही छोड़ दे, ऐसा नहीं कह रहे हैं। अब जैसे हमारे यहां भी दीक्षा विधान होता है तो यज्ञ कुंड होता ही स्थापना, तो ऐसा थोड़ी है कि यज्ञ का हम इस त्यागने को कह रहे हैं। बोले अनावृत नहीं होना, इससे आवृत नहीं होना चाहिए यज्ञ से, वैराग्य से। अब व्यक्ति, अब जैसे कुछ संप्रदाय है उनमें इतना वैराग्य होता है कि वो बाल भी नोचेंगे और कई कई दिन तक भूखे रहेंगे, तो लेकिन वहां पे भक्ति नहीं है, केवल वैराग्य है। तो यहां पे वैराग्य ने भक्ति को आवृत कर दिया है, आवृत कर दिया या है ही नहीं, शून्य है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल उपवास उपवास किए जा रहे हो, जब कोई कर ही नहीं रहा है तो उससे भी क्या फायदा। अगर किसी पे जब करते नहीं बन रहा है और एकादशी भी है तो जल पर जल पी के कर ले, जब कर, लेकिन जब करना महत्वपूर्ण है। और भी अगर शक्ति नहीं है तो कुछ एकाद फल इत्यादि खा ले, लेकिन उत्तमा भक्ति के जो अंग है उसका अनुशीलन होना, तो ये अनावृत, मतलब भक्ति कभी भी आवृत नहीं होना चाहिए, ये सिद्धांत मतलब अच्छे से समझ लेना चाहिए। तो यज्ञ वैराग्य योग सांख्य अभ्यास आदि यह तय अनावृतम, इनके द्वारा उसका अनावृत रहना चाहिए। ना कि उन्होंने फिर बोला ना कि पूर्वत शून्यम, क्योंकि यहां पर क्या बोला था, अन्य अभिलाषाएं शून्यम, अन्य मतलब जो भक्ति की विरोधी वस्तुएं हैं उनको तो एकदम त्याग देना है। विरोधी वस्तु क्या है आगे जाके उन्होंने द्वितीय परिच्छेद में बताया है कि भक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाचिनी, इसको पिशाचिनी बोलते, किसको, भक्ति और मुक्ति को नहीं बोला, स्पृहा को यहां बोला गया है, है ना, भक्ति मुक्ति स्पृहा पिशाचिनी यावती हृदय वर्तते, है ना, इस पर बड़ी विवेचना है कि ये शब्द है जो स्पृहा भुक्ति, जैसे ऐसा थोड़ी है कि भक्त जो भगवान जो भक्त लोग हैं वो कभी भोग नहीं करते। अब प्रियव्रत महाराज हैं, उत्तम कोटि का भोग भोगा उन्होंने, ध्रुव महाराज है 36 वर्षों तक उन्होंने उत्तम कोटि का भोग भोगा, प्रहलाद महाराज हैं, क्या वो राजा नहीं हुए, उनकी रानियां नहीं हुई क्या। तो ऐसा नहीं है कि जो भक्त लोग हैं वो भोग नहीं भोगते, भगवान के द्वारा प्रदत्त करने पर वो भोग कोई भोगते हैं, लेकिन उनकी भोग में आसक्ति ही नहीं होती है, उनकी आसक्ति भी कृष्ण चरणानंद में होती है। ये मतलब दृष्टव्य है, ये देखना चाहिए और यही हमारे जीव में अनुकरणीय है कि जीव कभी भी स्पृहा भोग की ना करे, लेकिन अगर भगवान के द्वारा प्रस्तुत किया जाए तो उसको वो अस्वीकार भी नहीं करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, ये भावना है। क्योंकि भगवान, जैसे कि प्रहलाद महाराज का पूरा दृष्टांत है, आगे जाके देखने में आएगा इस स्कंद में, कि उन्होंने भगवान बोल रहे हैं बार बार नरसिंहदेव कि बेटा प्रहलाद कुछ तो मांगो, कुछ मांगो, तो भगवान का सम्मान करने के लिए उन्होंने बोला कि अच्छा आप मुझे इतनी कृपा करिए कि मेरे अंदर कुछ भी इच्छा ही ना रहे मांगने को। बोले ये कोई वर्ग हुआ क्या कि कोई इच्छा ही ना रहे मांगने की, ये तो कोई बात नहीं हुई। तो उन्होंने कहा, लेकिन फिर बाद में उन्होंने कहा कि ठीक है आप इतना कह रहे हैं तो मेरे जो पिता है इनका ही आप उद्धार कर दीजिए, इन्होंने आपके चरणों में बड़ा ही अपराध किया है। तो फिर भगवान, अलग बात है वो कि बोलते हैं कि तुम क्या, तुम्हारी 21 पीढ़ियां तड़ गई, और वहां पर 21 पीढ़ियां की भी अलग विवेचना उन्होंने की है। अब बोले कि 21 कौन सी होंगे भाई, मातृकुल की कि पितृकुल की, अब 21 की भी विवेचना करना तो फिर एक बहुत दिक्कत है। तो आचार्यों ने बड़ा अच्छा सिद्धांत दिया वहां पे कि 21 को कैसे समझें कि 7 तो पहले वाली, ठीक है, अब सात हो गए मातृ कुल की, क्योंकि माता भी आई है, उनका भी कुल का उद्धार होना चाहिए, क्योंकि माता का जो कुल होता है वो दूसरा होता है, पिता का एक दूसरा कुल होता है, और सात जो हुई वो पिता के कुल के, तो कितने हो गई, सात से इक्कीस, सात पूर्व कुल वाले, सात मातृ कुल के और सात पितृकुल के, तो इस प्रकार से 21 पीढ़ियां। नहीं तो कोई समझे कि पहले वाली कि आगे वाली कि बीच वाली, तो ऐसा नहीं है, मतलब सभी का उद्धार होगा, सात पीढ़ी पहले, सात पीढ़ी इधर के पितृपक्ष में और सात पीढ़ी मातृपक्ष में। तो इस प्रकार से अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म आदि अनावृतम, ऐसा नहीं बोला कि इनको नहीं करना है, लेकिन महत्वता किसकी होना चाहिए, महत्व बुद्धि भक्ति की होनी चाहिए। फिर इसके बाद बोल रहे हैं अनुकूलेन, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम। अब अनुकूलेन पर बड़ी व्याख्या की है चक्रवर्ती पाद ने, श्री जीव गोस्वामी पाद ने भी बड़ी अच्छी व्याख्या की है, हम चक्रवर्ती पाद को देख रहे हैं। अनुकूलेन उद्देशाय श्री कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति इति उक्तलय। अब अनुकूल शब्द से क्या कहे, अनुकूल शब्द से उन्होंने पहली व्याख्या की कि जो प्रतिकूल ले, अब देखो प्रतिकूल तो भक्ति कभी होती नहीं है, जैसे कंस ने की या फिर ये हिरण्यकश्यप हिरण्यनाथ शिशुपाल ये सभी लोग कर रहे हैं, ये प्रतिकूल भाव से की है, ये करणीय नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आप 24 घंटे और पूरे जीवन भर प्रतिकूल भाव से भगवान का भजन कर सके तब तो ये ठीक है, लेकिन एक क्षण भी अगर आप भगवान को नहीं याद करें और विषय में फंस गए तो आपकी अधोगति हो जाएगी, जैसे राजा वेण की हुई थी, तो इसलिए ये तो प्रतिकूल वस्तु है नहीं। अब अनुकूल को क्या उन्होंने बोला कि श्री कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति ही, कि श्री कृष्ण को जो कुछ रुचिकर हो उसमें प्रवृत्ति करना, इसको उन्होंने क्या कहा अनुकूलेन, कि श्री कृष्ण को जो भी कुछ रुचिकर है वो करना। तो अब इस, अब ये जो सिद्धांत उन्होंने दिया कि श्री कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति, कि श्री कृष्ण को जो भी कुछ अच्छा लगेगा वो अनुकूल भक्ति कहलाएगी, तो इस पे उन्होंने दो प्रसंग उठाए, एक उठाया अतिव्याप्ति और एक अव्याप्ति। पहले ये दो शब्द को समझ लेते हैं, अतिव्याप्ति दोष क्या होता है और अव्याप्ति दोष क्या होता है। जैसे किसी ने पूछा कि मनुष्य क्या है, तो उन्होंने कहा जो भारत में रहते हैं वो मनुष्य है, तो ये सिद्धांत कहलाएगा अव्याप्ति, क्योंकि फिर विदेश में रहने वाले जितने भी मनुष्य है उनको हमने ग्रहण नहीं किया, उनको ग्रहण नहीं किया, तो मतलब जितना होना चाहिए तो उससे कम रह गया, उसको कहेंगे अव्याप्ति दोष। ये तर्क संग्रह में, यानी जो तर्क शास्त्र है न्याय शास्त्र, उसमें ये परिभाषा आती है। तो ये हो गया अव्याप्ति दोष, बड़ा सरल है, ऐसा कोई कठिन नहीं है। फिर एक होता है अतिव्याप्ति दोष। अब किसी ने पूछा कि मनुष्य कौन, तो बोले जिसकी दो आंख है वो मनुष्य, तो इसमें जितने जानवर हैं गाय भैंस बकरी जिनके वो भी आ जाएंगे, तो ये अतिव्याप्ति हो गया। तो इसी प्रकार से अब इस अनुकूलेन शब्द को समझाने के लिए उन्होंने एक परिभाषा दी, श्री कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति ही इति अनुकूलेन, कि कृष्ण को जो भी कुछ अच्छा लगेगा ये भक्ति है, अनुकूल भक्ति है। तो इस पर उन्होंने दो दोष निकाले। अब पहला दोष ये निकाला कि जैसे कई बार भगवान की इच्छा होती कि मैं भी बाहु उठा के युद्ध करूं किसी के साथ, अब कोई, अब भगवान के साथ में कौन युद्ध करे, तो अगर कोई व्यक्ति जैसे जरासंध इत्यादि उनके साथ युद्ध कर रहे हैं और भगवान को खूब मजा भी आ रहा है, कोई तीर मार रहा है और कोई उनको दो गदा भी लगा दी, और भगवान को क्योंकि प्रतिकूल भाव से की जा रही है, तो इसको भी क्या भक्ति मान ले, क्योंकि इसमें कृष्ण की तो रुचि है, कृष्ण चाह रहे हैं कि मुझसे कोई युद्ध करे, मुझे भी कोई दो गदा मारे, मुझ पर भी कोई प्रहार करे, तो भली ये कृष्ण की रुचिकर वस्तु है, लेकिन इसमें कौन सा दोष आ जाएगा, अतिव्याप्ति दोष, क्योंकि ये भक्ति नहीं है। जो उस असुर के द्वारा भगवान कृष्ण की प्रीतिजनक वस्तु होने पर भी, कृषि रोज कृष्ण श्री कृष्ण रोच माना, कृष्ण को अच्छी लग रही है वो युद्ध की स्थिति, कृष्ण को युद्ध रोचकर रुचिकर है, लेकिन फिर भी यह स्थिति क्या है, भक्ति नहीं है, सभी लोग जानते हैं, तो इसलिए इसमें अतिव्याप्ति दोष आ गया। अब दूसरी स्थिति लेते हैं उखल बंधन लीला से, कि माता यशोदा क्या कर रही है, कृष्ण को बांध रही है, कृष्ण के प्रतिकूल है ये पूरा आचरण, किसी रोज श्री कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति नहीं है ये, लेकिन ये क्या भक्ति नहीं है, भक्ति है, बिल्कुल भक्ति है। तो फिर इन्होंने कहा कि केवल अगर ये सिद्धांत बना दिया जाए अनुकूलेन के लिए कि श्री कृष्णाय रोचमाना प्रवृत्ति, तो इससे इस बात नहीं बनेगी, है ना, कि कृष्ण को, क्योंकि यशोदा माई जो कर रही है वो क्या हो जाएगा, अव्याप्ति दोष में चला गया, क्योंकि उसको भक्ति मान नहीं रहे हो, और जो भक्ति नहीं है कि असुर के द्वारा प्रहार किया जा रहा है, अति व्याप्ति दोष है, उसको भक्ति में गिन लिया गया, तो दोनों में ही विरोध आ जाएगा। तो उन्होंने कहा कि चलिए अब इसको भी अपन छोड़ देते हैं, अब इसके लिए हम परिभाषा क्या बनाते हैं विशेष रूप से, तो बोल रहे हैं अगर ऐसा कर देते हैं कि प्रतिकूल अभावात, ठीक है अनुकूल का उल्टा कर देते हैं कि प्रतिकूल का अभाव है, प्रतिकूल अभावात कि प्रतिकूलता नहीं है, इसको हम अनुकूल भक्ति कह दें तो बोलेंगे भाई अब इसमें एक हो जाएगा क्या कि अनुशीलन शब्द है वो छूटने पर, अगर हम अनुशीलन शब्द की फिर तो प्रासंगिकता नहीं रह जाएगी, केवल इन्होंने परिभाषा दे दी अनुकूल की जगह क्या बोल देते प्रतिकूल अभावात कि प्रतिकूलता का अभाव ही भक्ति है, शुद्धा भक्ति में आ जाएगा। तो बोले कि घटपट इत्यादि, अब ये जो माइक है तो ये भी तो कुछ नहीं कर रहा है, ये तो कुछ भी नहीं कर रहा है, ना अनुकूल कर रहा ना प्रतिकूल, तो इस प्रतिकूल अभाव में फिर ये भी एक भक्त कहलाएगा ये माइक, ये जो करताल तो खैर दिव्य वस्तु है, कोई भी टेबल है, मेज है, कोई भी वस्तु है, कोई भी भौतिक है, ये बैग है, तो ये भी क्या हो गया प्रतिकूल अभाव से युक्त है, ये तो, ये भी तो कुछ नहीं कर रहा है, तो इस प्रकार से इसमें भी भक्ति कहलाने लगेगी। तो बोले नहीं नहीं इसको भी हटाना पड़ेगा, तो इसलिए प्रतिकूल अभावात अनुशीलनम, अनुशीलन करना, देखो क्योंकि आगे जाके जो शब्द आया है कृष्ण अनुशीलनम, अनुशीलन मतलब कुछ करना, भगवान के लिए कुछ करके तो दिखाए ना, अब जैसे तो मटका भी रखा हुआ है वो थोड़ी कुछ कर रहा है, प्रतिकूल अभाव से युक्त है, प्रतिकूलता उसमें बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहां पे हमने पहले परिभाषा बनाई थी कि कृष्णाय रोचमान प्रवृत्ति इति अनुकूल लेना, तो वो भी सिद्ध नहीं हो रही है पूरी पूरी, उसमें भी कुछ दोष आ रहे हैं कि भाई कहीं तो यशोदा माई भक्त नहीं कहलाएंगे और असुर भक्त कहलाने लगेंगे, वो भी गड़बड़ बात है। और यहां पे अगर प्रतिकूल अभावात कि प्रतिकूलता नहीं है उसको अगर हम केवल मनाए तो उसमें जो जड़ वस्तुएं हैं उनमें भी भक्ति के जो दर्शन है वो आने लगेंगे, तो दोनों में ही विरोध आ जाएगा। तो इसलिए अनुशीलन शब्द है वो भी कौन सा अनुशीलन, कृष्ण अनुशीलन, यानी किसी देवी देवताओं का अनुशीलन नहीं, कृष्ण अनुशीलन। और कृष्ण के लिए फिर उन्होंने व्याख्या की, अच्छा कृष्ण तो केवल कृष्ण ही क्या, नारायण विष्णु और जितने अनंत अनंत कोटि अवतार हुए हैं भगवान के वो नहीं, तो उन्होंने टीका में स्पष्ट कर दिया कि कृष्ण शब्द च अत्र स्वयं भगवतः श्री कृष्ण से तद रूपाणाम च अन्येषाणाम अवतारणाम ग्राहका, कि अन्येषाम अवतारणाम ग्राहका, के कृष्ण शब्द केवल कृष्ण नहीं, कृष्ण के जितने भी अंश कला अवतार जितने भी आते हैं वो उसमें ग्राह है, कोई भी भक्त हो उनके लिए है, क्योंकि ये जो ग्रंथ है ऐसा नहीं है केवल कृष्ण भक्तों के लिए है, ये जो भक्ति रसामृत सिंधु है ये सभी भक्तों के लिए है, क्योंकि गौड़ी वैष्णव में भी कई ऐसे भक्त हुए हैं जो राम भक्त हुए हैं, है ना, अनेक अनेक नरसिंह भक्त हुए हैं, तो उनकी अलग श्रद्धा है, वो अलग एक चर्चा है, लेकिन यहां पे जो सिद्धांत है कि कृष्ण या कृष्ण अवतार जो भी है उनके प्रति अनुशीलन, इस प्रकार से अगर भक्ति किया तो ये जो अनुशीलन किया जाएगा तो ये उत्तमा भक्ति कहलाएगा। तो एक बार फिर देख लें इसको कि अन्य अविलासिता शून्यम, जो भक्ति से विरुद्ध है भुक्ति मुक्ति की स्प्रेहा, इसको तो पूर्णता ही त्यागना है। ज्ञान कर्म आदि, ज्ञान मतलब निर्वेद ब्रह्म ज्ञान, इसका जो अनुसंधान है इसको त्यागना है। कर्म मतलब स्मार्त नित्य निमित्त कर्म है, इसको त्यागना है, लेकिन भक्ति में जो चीज है उनको करना है। ज्ञान मतलब भजनीय तत्व विवेचन जो वाली वस्तुएं हैं उनको निश्चित ही करना है, भगवत गीता पढ़ना है, भागवतम पढ़ना है, भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ना है, मतलब क्योंकि ये भजनीय तत्व उसका विवेचन प्रस्तुत कर रही हैं। आगे फिर यज्ञ और बाकी जो वस्तुएं हैं, यज्ञ वैराग्य योग सांख्य, इनको उतना ग्रहण करना है कि भक्ति परिच्छिन्न ना हो जाए, भक्ति नहीं ढकनी चाहिए शुद्धा भक्ति, लेकिन भक्ति के लिए जो सहायक वस्तु है उतना उसको ग्रहण अवश्य करेंगे क्योंकि वो भक्ति में सहायक है। कभी कभी वैराग्य करना भी आवश्यक रहता है बहुत ज्यादा, क्योंकि अगर व्यक्ति 5 टाइम खाएगा तो फिर जब कब करेगा, वो हमेशा निद्रा में ही रहेगा, तो संतुलित आहार करना आवश्यक है ना। तो वैराग्य से अगर व्यक्ति जन्माष्टमी राधाष्टमी नित्यानंद त्रयोदशी इन व्रतों को अच्छे से अनुशीलन नहीं करेगा तो भगवत चिंतन कैसे करेगा, तो वैराग्य भी आवश्यकता है, यज्ञ करना भी आवश्यक है क्योंकि भगवान के द्वारा निर्धारित है, योग करना भी आवश्यकता है। अगर व्यक्ति लेट के जप करे तो कितना जप कर लेगा? तो योग साधना, आसन, प्राणायाम इत्यादि ये भी भक्तों के लिए आवश्यक है, लेकिन कितने? कि भक्ति नहीं ढकनी चाहिए, ये सिद्धांत है। अगर कभी भक्ति ढकने लगे तो कृपया उसको त्याग देना चाहिए, या उसको कम करके जो भक्ति के नियम है उनको में ही परिपूर्णता दिखानी चाहिए। तो इस प्रकार से बड़ी अच्छी यहां पे व्याख्या की है श्रील प्रभुपाद ने कि भले आप उत्कट तपस्या करें, अगर वो अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए करेंगे तो वो भक्ति नहीं कहलाएगी। तो कृष्ण की प्रीत्यर्थ, वो भी अनुकूलता में, वो भी किसमें? अनुशीलन भाव से। प्रतिकूलता नहीं होनी चाहिए, प्रतिकूल अभावात अनुशीलनम, ये इसका सिद्धांत हुआ। केवल कृष्णाय प्रीत्यर्थम ये नहीं होगा, ठीक है। तो यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम करता हूं, अगर कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। इन्होंने कहा है अनुशीलनम, अनुशीलनम की व्याख्या इन्होंने इस प्रकार से की है। देखिए इसमें दो चीजें हैं, अनुशीलन मतलब किसी चीज को बार बार, अनुशब्द जो होता है संस्कृत में मतलब बार बार करने के लिए होता है, शीलनम मतलब उसको करना। भक्ति करने वाली वस्तु है, वो भी एक बार नहीं कि एक दिन जब कर लिया सो हो गया, सो बात नहीं है, बार बार करने की बात है। और भक्ति को कब तक करते रहे? पहले तो होता है साधन भक्ति, क्योंकि इसकी परिभाषा में, अनुशीलनम की परिभाषा में उन्होंने कहा है कि भक्ता संजायता भक्ता, कि भक्ति से ही भक्ति उत्पन्न होती है। अब भक्ति शब्द के लिए उन्होंने व्याख्या की है कि साधन भक्ति से ही उत्तमा भक्ति, यानी साधन भक्ति से ही भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति की उत्पत्ति होती है। कि जब तक व्यक्ति को भाव भक्ति या प्रेमा भक्ति की प्राप्ति ना हो जाए तब तक व्यक्ति को साधन भक्ति को करते रहना चाहिए, यह अनुशीलन शब्द की व्याख्या है। कि भक्ति को करता रहे, कब तक करता? कोई प्रश्न करेगा भाई हमें 20 साल हो गए, हमें तो कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा हमें लग रहा है, तो क्या करें? तो बोले करते रहो, क्योंकि जब तक भाव भक्ति, क्योंकि भाव भक्ति आने के बाद, और भाव भक्ति में भी किंचित मात्रा में अगर कोई अपराध के शेष रह जाते हैं तो भगवत साक्षात्कार नहीं होता है। फिर जब प्रेमा भक्ति आती है तो फिर स्वतः ही भक्ति होने लगती है, फिर उसको भक्ति उसका स्वभाव हो जाता है, उसको साधन में लगना नहीं पड़ता है, अपने आप ही फिर जप होता है, अपने आप ही कीर्तन होता है, अपने आप ही उन्माद अवस्था हो जाती है। लेकिन उससे पहले जीवात्मा को जब तक शुद्धा भक्ति के स्तर पर नहीं, प्रेमा भक्ति के स्तर पर नहीं आया, तब तक उसको अनुशीलन करना पड़ता है। बार बार उसको जप करना पड़ेगा, बार बार भागवत श्रवण करना पड़ेगा, भगवत गीता पढ़ना पड़ेगा, सत्संग करना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो प्रेमा भक्ति के स्तर पर आ गए वो नहीं करते हैं, वो स्वाभाविक करने लगते हैं, लेकिन हम लोगों को जबरन करना पड़ता है, बस इतना अंतर रहता है। इसलिए अनुशीलन शब्द क्या है, और कोई अगर कुछ कहना चाहे तो कह सकते हैं इस शब्द में। मतलब आगे तो जो परंपरा चलेगी वो इन्हीं की चलेगी। हाँ हाँ नहीं नहीं मैंने उल्टा बोल दिया इसको, पहले माता की सात पीढ़ी और पिता की सात पीढ़ी, आगे तो क्योंकि वही है तो उन्हीं की परंपरा चलेगी। मातृकुल पितृकुल, मैंने उल्टा बोल दिया था,
नीचे जो है केवल
वो तो वो दोनों एक हो गए ना। हाँ हाँ वो मतलब पहले पिता का कुल था उसके साथ, माता का कुल था उसके साथ, अब तो इनका ही कुल चलेगा जो भी चलेगा, तो वो आगे आने वाले लोग। हरे कृष्ण ग्रंथराज। अच्छा माता जी का कोई प्रश्न है? हाँ 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 बस प्रीत्यर्थम, भगवत प्रीत्यर्थम, ठीक। मतलब जो शास्त्र में बताया गया है वो प्रीति, ऐसा नहीं कि जैसे ये युद्ध भी भगवान को अच्छा लग रहा है वैसी प्रीति नहीं, जो शास्त्र निर्देशित कर रहे हैं भक्ति रसामृत सिंधु में जो 64 अंग बताए गए हैं भक्ति के, उसके आधार पर। ग्रंथराज श्रीमद भागवतम की, श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की।